ओम शांति। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस सत्र की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक बहुत प्राचीन मंदिर था और उस प्राचीन मंदिर पर बहुत सारे कबूतर थे, क्योंकि मंदिर का जीर्णोद्धार करना था। इसलिए उन कबूतरों ने सोचा, हम अभी कहीं और जाकर रहेंगे। तो वो सारे कबूतर वहां से गए और एक चर्च के ऊपर उन्होंने बसेरा किया, और उस चर्च पर पहले से ही कुछ कबूतर थे, और ये जो नए आए हुए कबूतर थे और जो पुराने कबूतर थे, सब आपस में मिलकर बड़े प्रेम से वहां रहने लगे। कुछ समय के बाद उस चर्च में क्रिसमस का प्रोग्राम होने वाला था, इसलिए थोड़ा सा रिपेयर का कार्यक्रम था, प्रोग्राम था उनका। इसीलिए इन कबूतरों ने सोचा कि हम कुछ समय के लिए कहीं और जाते हैं। तो वो सारे कबूतर एक मस्जिद के ऊपर गए और उस मस्जिद में पहले से ही कुछ कबूतर थे, तो नए कबूतर पुराने कबूतर साथ साथ रहने लगे। कुछ समय बीता, रमजान आने वाला था। वो जो मस्जिद है उसको और रंगारोगन, कुछ और ठीक करना था। तो इन कबूतरों ने सोचा कि हम चलो कहीं और चलते हैं। तो वो एक गुरुद्वारे के ऊपर गए, और गुरुद्वारे के ऊपर जब गए, कुछ समय के बाद देखा कबूतरों ने ऊपर से नीचे झगड़ा हो रहा है, लोग झगड़ रहे हैं दूर। तो एक छोटे से बच्चे ने पूछा, कबूतर ने अपनी मां से, मां ये क्या हो रहा है? तो मां ने कहा, बच्चे ये लोग झगड़ रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और अलग अलग धर्म के लोग, क्यों कर रहे हैं ऐसा? उस छोटे से बच्चे ने पूछा। तो मां ने बताया, क्योंकि ये अलग अलग धर्म के लोग हैं, जो चर्च जाते हैं वो क्रिश्चियन हैं, जो मस्जिद में जाते हैं वो मुसलमान हैं, जो मंदिर में जाते हैं वो हिंदू हैं, जो गुरुद्वारे में जाते हैं वो सिख हैं। तो छोटे से बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मां जब हम मंदिर के ऊपर थे तब भी कबूतर थे, जब हम मस्जिद के ऊपर आए तब भी कबूतर थे, जब हम चर्च के ऊपर थे तब भी कबूतर थे, और अब जब हम गुरुद्वारे के ऊपर है तब भी कबूतर है, फिर ये लोग क्यों लड़ते हैं? हम तो नहीं लड़ते। तो मां ने कहा, एक बहुत अच्छा उत्तर दिया कि बेटा, हम लोग जो है ना ऊपर रहते हैं, और हमने इस संसार की जो सर्वश्रेष्ठ सत्ता है उससे अपना संबंध जोड़ा है, उस परमात्मा से, और ये जो लोग हैं ना जो नीचे हैं, ये धार्मिक स्थानों पर जाते तो हैं, पर उन्होंने अब तक भी वो जो परम सत्ता है, वो जो एक ओंकार निराकार है, उससे अभी तक वो गहरा नाता, वो गहरा संबंध नहीं जोड़ा है, और इसीलिए वो लोग झगड़ते रहते हैं। कहानी बहुत छोटी है परंतु बहुत मार्मिक। सारी लड़ाइयां छोटे स्थल पर होती है। जैसे जैसे चेतना, जैसे जैसे आत्मा, जैसे जैसे हमारा मन ऊंचाइयों पे चढ़ने लगता है, सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। प्रश्न ये है कि हम इस समय कहाँ हैं? हमारे मन की स्थिति क्या है, मन कितना शांत है, मन कितना एकाग्र है, मन कितना दत्तचित्त हुआ है। जब हम भगवान से बातें करते हैं, जब हम भगवान को याद करते हैं, जब उसके ध्यान में बैठते हैं, तो कितनी मन में एकाग्रता है, कहीं मन भटकता तो नहीं है? क्योंकि इस समय सारा संसार अशांत है, एक अशांति का सागर संसार में डोल रहा है। इस अशांति के बीच क्या हमारा जीवन कमल समान है? कीचड़ में रहते हुए भी कमल समान पवित्र, कमल समान निर्मल। और आज सबसे बड़ी जरूरत इसी विश्व शांति की है, इसी एकता के पैगाम की है। और हमें बहुत हर्ष है कि आज हम आप सबके बीच है। गुरु नानक देव जी की ये जयंती, ये समारोह जो यहां हो रहा है, हमें याद आ रहा है एक इंग्लिश फिलोसोफर है जिन्होंने गुरु नानक देव जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और उन्होंने लिखा, व्हेन गुरु नानक देव जी डाइड, हिंदू क्लेम्ड हिम फॉर क्रिमेशन व्हाइल मुस्लिम क्लेम्ड हिज बॉडी फॉर ब्यूरियल। दैट शोज दैट अमाउंट ऑफ वर्क दिस मैन हैज डन फॉर बिल्डिंग द यूनिटी between Hindus and Muslims, and he doesn't belong to any caste, he doesn't belong to any creed, he doesn't belong to any sect, he had come for humanity, and he is the man of humanity. Aisa powerful statement is angrezi darshanik ne, philosopher ne diya hai, ki Guru Nanak Dev Ji jo aaye the, wo kisi ek dharm ke nahi the. He is not the monopoly of any particular religion. He had come for humanity. तो आज अगर विश्व की दिशा दशा देखे तो चारों ओर हलचल है, चारों ओर अराजकता है, अनार्की, डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंस है चहु ओर। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट कहता है कि इस संसार में लगभग 4200 धर्म है, टोटल 4200 धर्म है। और आप अगर इतिहास की स्टडी करो तो पिछले 2500 वर्ष में लगभग 1500 से भी ज्यादा युद्ध हुए हैं, और मैक्सिमम अधिकतर ये जो युद्ध हुए हैं धर्म के नाम पर हुए हैं। हर दिन मनुष्य लड़ता रहा, हर दिन झगड़ता रहा। ऐसे बहुत कम समय है इतिहास में जब कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुआ। और वो समय वो था जब व्यक्ति लड़ नहीं रहा था परंतु लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा था। ये संसार की स्थिति है, ये संसार का वर्तमान का वायुमंडल है। ऐसे वायुमंडल में क्या हम करें, किसके पदचिन्हों पर चले कि जो हमारा जीवन भी बहुत दिव्य बन जाए, बहुत श्रेष्ठ बन जाए। तो वो जो शांति का मार्ग है वो हमारे ही अंदर है। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, उस एक की याद, उस एक का सिमरन ही हमें उस शांति तक पहुंचाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम चाहेंगे सभी स्थिर होकर बैठ जाएंगे, एक 3-4 मिनट के लिए हम थोड़ा सा ध्यान का योग कहो, अजपा जाप कहो, एकाग्रता कहो, उसका अभ्यास करेंगे तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे एकदम स्थिर। शरीर की सारी हलचल समाप्त, मन स्थिर एकाग्र। इस संसार के सभी चिंतन से परे, घर गृहस्थी संसार का कारोबार इन सभी के सिमरन से, चिंतन से स्वयं को बाहर निकालेंगे और अपने आप से बातें जीवन के अनंत सागर में मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, किस ओर मैं भाग रहा हूं, ये दुख, ये दर्द, ये चिंता, ये पीड़ा, ये संसार की बातें कहीं इनमें उलझ तो नहीं गया। जीवन में जो करना था क्या वही कर रहा हूं, क्या मेरा मार्ग भगवान की ओर जा रहा है, सभी स्थिर बैठेंगे, आंखें बंद, अपने आप से बातें, मौन। एक बेआवाज चुप्पी, संसार के ये विकार, ये विषय वासना कहीं मुझे डुबो तो नहीं रही है, क्या मेरा जीवन संपूर्ण पवित्र है, मेरे विचार, मेरी वाणी, मेरे कर्म, मेरी दृष्टि, क्या अविनाशी के पीछे भागते भागते अविनाशी को छोड़ तो नहीं दिया, कहां भाग रहा हूं, हे प्रभु, हे वाहे गुरु, कहीं तेरा हाथ छोड़ तो नहीं दिया है, ये पांच विकार, ये जीवन में हो रही गिरती कला कितना निर्विकार मेरा चित्त है, मन है, कितना शुद्ध मेरा आचरण है, स्वयं को देख रहा हूं, आंखों के सम्मुख देखना है अपनी दिनचर्या को, सुबह से लेकर रात तक क्या करता हूं, किस तरह बातें करता हूं, किस तरह से मेरा जीवन है, जीवन की भागम भाग आपाधापी में, भाग दौड़ में मेरे अंदर का वो मौन, वो साइलेंस कहीं खो तो नहीं गया, किसके लिए जी रहा हूं, अपने स्वार्थ के लिए या विश्व कल्याण के लिए, व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, वापिस आंखें खोलेंगे। बीच बीच में हर दिन तीन काम रोज करने हैं, एक स्वयं से बातें, अपने आप से ही पूछना, हे मेरे मन तू कहां जा रहा है, हे मेरे मन तुझे चाहिए क्या, हे मेरे मन इन विकारों में, इन वासनाओं में डूबकर तुझे मिला क्या है, राम गयो, रावण गयो, सब गए। सपने ही सब संसार, नानक कहे स्थिर कछु नाही, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब गए। और फिर भी मैं कहां भाग रहा हूं, किसके पीछे भाग रहा हूं, किस लिए भाग रहा हूं, अगर ये मिल जाए तो क्या होगा, प्राप्ति क्या है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा करोड़पति, जब वो मर रहा था, बहुत दुखी था, और उसने लिखा कि इतना सारा धन संपत्ति जो मैंने कमाई, इस धन ने, इस संपत्ति ने मुझे जरा भी सुख नहीं दिया। और ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे जीवन हाथ से छूट गया। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने लिखा है, मैंने अपना सारा जीवन एटम्स मॉलिक्यूल्स रिसर्च में लगा दिया, पर जीवन में जो करना था, जीवन में जो पाना था, वो तो रह ही गया। वो भगवान कहां रह गया पता नहीं, उससे मैं कितना दूर चला गया, जीवन तो कहीं से कहीं भटक गया। एज इफ लाइफ हैज स्लिप थ्रू माई फिंगर्स, ऐसी बात उसने लिखी। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें और ये केंद्र है, ये सर्कल और ये केंद्र, हमें रहना है केंद्र पर हमने शायद जीवन सारा इस परिधि पर सर्कमफेरेंस और ऑर्बिट में बिता दिया, जहां पर हमारे मित्र है, संबंधी है, लोग है, व्यक्ति है, ऑफिस है, जॉब है, रिलेशनशिप है। ये करना तो था पर इस केंद्र से दूर, और वो केंद्र है मैं स्वयं, मेरा अपना अस्तित्व, उसको मैं भूल गया और सारा जीवन इधर बिता दिया। तो आज के इस दिन कुछ और बातें हम आपको बताएंगे। अगर सभी धर्मों को देखो, सभी धर्मों को, कुछ बातें सभी धर्मों में समान है। ऐसा कोई धर्म नहीं है इस संसार का जो हमें वो सब करने को कहता है जो आज संसार में हो रहा है और धर्म के नाम पर हो रहा है। सबसे पहली बात जो हर धर्म में है वो है अहिंसा। प्रश्न है, अहिंसा अर्थात क्या? केवल हिंसा न करना अर्थात अहिंसा नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख ना देना, किसी को भी काटा न चुभाना। अगर कोई आगे बढ़ रहा है उसके प्रति मन में हिंसा है, मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, क्यों क्यों हम किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते? ऐसा कहा जाता है, यदि मुझे किसी से जेलसी है, कोई मेरे सामने है और वो मेरे से आगे जा रहा है और मुझे जेलसी है, तो मैं उस व्यक्ति से जेलसी नहीं कर रहा हूं, उस सफलता से जेलसी कर रहा हूं, इसलिए सफलता भी मेरे पास नहीं आएगी, वो भी मुझसे दूर जाएगी। सभी धर्म सिखाते हैं अहिंसा। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने अहिंसा के लिए नहीं बताया, नहीं सिखाया, पर वो अहिंसा की परिभाषा बहुत व्यापक है, बहुत बड़ी है। मन से भी किसी को दुख ना देना, क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं, ये सारी सृष्टि एक प्रकंपन का यूनिवर्स है, ओशन ऑफ वाइब्रेशंस। जो मैं यहां सोच रहा हूं वो उस तक पहुंच रहा है बिना बोले। अगर मैं किसी से नफरत की भावना रखता हूं, वो सारी नफरत धीरे धीरे, वो प्रकंपन, वो वाइब्रेशंस उस व्यक्ति तक, उस आत्मा तक, उस रूह तक पहुंच रहे हैं। मैंने कुछ बोला नहीं है फिर भी पहुंच रहे। जैसे दिखाया है, एक राजा है, बहुत बड़ा राजा, जिसके राज्य में एक लकड़हारा है जो उसका दोस्त है पुराना। वो लकड़हारा सोचता है, कब तक मैं काम करता रहूं, रोज थोड़ी थोड़ी लकड़ी बेचता हूं, कोई मरता है तो लकड़ी दी जाती है, बेचता हूं, कितना अच्छा होगा अगर हमारा ये जो राजा है यही मर जाए तो कितनी सारी लकड़ी बिक जाएगी मेरी। और निगेटिव विचार चालू हो जाते हैं उसके मन में। उधर जो राजा होता है, जो कि उसका पुराना दोस्त है, वो सोचता है मेरे राज्य में सब कुछ कितना अच्छा है, और ये जो लकड़हारा है पुराना मेरा दोस्त, उसके पास लकड़ियां है, कितना अच्छा हो जाए अगर वो मर जाए तो सारी लकड़ियां राज खजाने में आ जाएगी, दोनों आपस में मिलते हैं। और ये बात एक दूसरे से कहते हैं, वो कहता है मैंने ये सोचा, वो कहता है मैंने ये सोचा। क्यों ये सोचा? अब तक तो ऐसे विचार कभी नहीं आए एक दूसरे के प्रति निगेटिव, क्योंकि उसने सोचा तो उसके परिणाम स्वरूप इधर भी निगेटिव चालू हो गया। जो मैं सोच रहा हूं वो सारे सृष्टि को प्रभावित कर रहा है। एक नियम है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। जो मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, वो विचार, वो धाराएं प्रकृति में जा रहे, उनका रिएक्शन हो रहा है, घटनाओं का निर्माण हो रहा है। वैसी ही घटनाएं निर्माण होगी, वैसी ही चीजें हमारे जीवन में होगी जो हम सोच रहे हैं, वो सोच वापस हम तक आ रही है। इसको कहते हैं आकर्षण का नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो भी मैं सोचता हूं वो वापस मुझी तक आ जाता है। इसलिए अपने विचारों पर बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से सिमिर सिमिर एकांत में बैठकर चिंतन करना है, एकांत में और मौन में। अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मौन, एकांत, अंतर्मुक्ता। हम आपसे कह रहे थे दिन में तीन काम करने हैं रोज। पहला काम बताया था अपने आप से बातें, एकांत में बैठ जाओ, किसी नदी किनारे, किसी सागर किनारे, किसी पहाड़ पर, अगर ये सब नहीं है तो छत पर, किसी गार्डन में रोज एकांत निकालना है। और उस एकांत में ही, उस साइलेंस में ही आत्मा की उन्नति होती है। एकांत में बैठ के सोचना है ये क्या है, ये कौन से शब्द है, ये कौन सी वाणी है, ऐसा जीवन हमारा भी पवित्र कैसे बन जाए, कैसे इनको देखकर कैसे पवित्र भाव मन में जागते हैं। जैसे अभी यहां हम बैठे हैं इस गुरुद्वारे में, कितने पवित्र वाइब्रेशंस है यहां पर। क्या हमारे घर के वाइब्रेशंस भी ऐसे बन सकते हैं? क्या हमारा घर भी एक होली स्थल बन सकता है? इसका चिंतन। तो पहला अपने आप से बात करना, दूसरा उस निराकार से बात करना, उस परमात्मा से बात करना। रोज समय निकालना है, कुछ समय उससे बात करने में। एक छोटी सी कहानी है, एक महिला चर्च में जाती है, फादर से कहती है, फादर कैन यू कम टू माय प्लेस, मेरे पिताजी जो है बहुत बीमार है, किसी भी वक्त मर सकते हैं, क्या आप मेरे घर आ सकते हो? फादर कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं आता हूं। फादर घर में पहुंचते हैं, उस समय वो डॉटर, वो लड़की, उनकी बेटी वहां नहीं है। देखते हैं एक बूढ़ा सा व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके सामने एक चेयर रखी हुई है, खाली चेयर। इस पादरी को लगता है शायद मेरे लिए चेयर रखी है, तो वो पूछता है कि आपको पता था मैं आने वाला हूं? वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है नहीं, आई डोंट नो दैट यू आर कमिंग, मुझे तो पता ही नहीं आप आने वाले हो। अच्छा तो चेयर क्यों रखी है? वो बूढ़ा व्यक्ति, वो कहता है मैं फादर हूं, यहां पर जो चर्च है वहां पर मैं हूं, पादरी हूं, आपको देखने आया हूं। तो बूढ़ा व्यक्ति बीमार है, लेटा हुआ है, कहता है ठीक है बैठो, अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, ये जो चेयर खाली रखी है ना, मैंने क्यों खाली रखी है? वो कहता है ये बात मैंने अपनी बेटी को भी नहीं बताई, मैं रोज चर्च जाता था, रोज प्रेयर करता था, पर कभी मन नहीं लगता था, अंदर से कुछ नहीं था, खाली एक दिखावा था, एक ढोंग था, बस जाना आना जाना आना, और पर करता सब कुछ था। एक बार मेरे मित्र से मैंने कहा कि मैं भगवान से तो बहुत दूर हूं, केवल ऊपर का दिखावा मात्र है बस, मैं क्या करूं? तो मेरे मित्र ने कहा तुम एक काम करो, अपना बिस्तर, अपना जो है ना, उसके सामने खाली चेयर रख दो और ये सोचो कि ये भगवान बैठा हुआ है और उसको अपने दिल की सारी बातें रोज बताओ। और तब से मैंने ये काम चालू किया, रोज 2-3 घंटा मैं खाली चेयर रखता हूं, सोचता हूं ये खुद भगवान है, इससे मैं बातें करते रहता हूं। और सही मानो मेरा जीवन इतना खुश हो गया तब से, अब तो मैं बीमार हूं कुछ महीनों से, खाली चेयर सामने है, मैं बात करते रहता हूं। ये घटना पूरी हो जाती है। कुछ समय के बाद वो महिला उस फादर से वापस मिलती है, फादर पूछते पिताजी कैसे है, वो कहती है पिताजी ने कल रात को ही शरीर छोड़ दिया, एक्सपायर हो गए। तो फादर पूछते हैं उनकी डेथ कैसे हुई, किस उनकी स्थिति क्या थी मन की? उस महिला ने कहा मेरे पिताजी जब गुजर रहे थे, जा रहे थे, पहले उन्होंने मुझे बुलाया, गले लगाया, प्यार किया, और उसके बाद में पता नहीं उन्होंने क्या किया, वो जो खाली चेयर थी उसके ऊपर गए नीचे और अपना माथा उस चेयर पर रख दिया और बस वहीं शरीर छोड़ दिया, आत्मा निकल गई। फादर कहते हैं मन ही मन काश ऐसी मृत्यु हरेक की होती। भगवान से बातें करना, ये दूसरा काम रोज होना चाहिए। और तीसरा काम ज्ञान का चिंतन, सिमरन। जो ज्ञान हम सुनते हैं, जो ज्ञान हम पढ़ते हैं, उसे केवल रटना नहीं है, परंतु सोचना है इसके अंदर गहराई क्या है। ऊपर ऊपर रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नीचे सोचना अर्थात तैरना, चिंतन करना अर्थात डूबना उस सागर में, गोताखोर की तरह अंदर जाना और मोती निकालना नीचे से, ये काम हमको रोज करना है। तो सब धर्मों में हम बात कर रहे थे, एक चीज जो लिखी हुई है वो है अहिंसा, और अहिंसा अर्थात किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना हो। और एक काम, रोज सुबह प्रभात अमृत वेले के समय हम देखें उन सभी लोगों को जिनको हमने बहुत दुख दिया है और मन से उनसे माफी मांगे, और दूसरा काम जिन्होंने हमको दुख दिया है उनके साथ क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, माफ कर देंगे, अनकंडीशनल पार्डन। ये काम अगर हम रोज करते रहे तो 6 मास में ऐसा अनुभव होगा जो भारीपन है वो चला गया, चाहे किसी ने हमसे कैसा भी व्यवहार किया कैसा भी, पर हम भगवान की संतान हैं, हमें सबको माफ कर देना है। और जो कुछ हो रहा है ये कार्मिक अकाउंट है, बहुत जन्म जन्म का हिसाब चुकतू हुआ है, अच्छा है हिसाब चुकतू किताब बंद, इसलिए ये भी काम करना है। दूसरी चीज जो हर धर्म में है वो है आस्था, आस्था अर्थात फेथ, आस्था अर्थात विश्वास, निश्चय, कितना निश्चय है हमारा कि बस यही सब कुछ है, जिस मार्ग पर हम निकल पड़े बस इसी का नशा, अब और कोई हमें रोक नहीं सकता, भगवान के मार्ग पर हम निकल पड़े हैं यही सच्चा मार्ग है, संसार का मार्ग में जलना है और अंत में राख बन जाती है, इस अध्यात्म के मार्ग में भी जलना है पर अंत में हम हीरा बन जाते हैं जो सारे विश्व को रोशन करता है। तो आस्था, आस्था बड़ी बड़ी डेलिकेट, बड़ी नाजुक चीज है। विश्वास, हम बाइबल का एक उदाहरण देंगे आपको, जीसस क्राइस्ट अपनी नाव में बैठ के जा रहे हैं, सोए हैं, उनके 12 शिष्य उस नाव में है, अचानक गलीली की उस झील में तूफान आ जाता है और तूफान आते ही सारे शिष्य घबरा जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, अफरा तफरी मच जाती है उस नाव में, वो कहते क्या होगा कैसा होगा, पानी समुद्र का, वो नाव झील का पानी नाव में आ रहा है, नाव अभी डूबी की डूबी, और देखते हैं वो जीसस तो वहां सोया पड़ा है, वो उसको कहते हैं मालिक उठो, वो उठता है और आकाश की तरफ हाथ करता है, पीस बी स्टिल, और वो तूफान शांत हो जाता है। उसके बाद वो अपने शिष्यों से एक बात कहता है, कहता है क्या तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं जिस नाव में मैं बैठा हूं वो डूब जाएगी, एक कम ईमान वालो, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, इतना भी विश्वास नहीं है जिस नाव में मैं बैठा हूं क्या वो डूब सकती है, सच की नैया हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं, और असत्य की नैया जो है वो हिलेगी डूलेगी नहीं, सीधा डूब जाएगी एक दिन। इसलिए आस्था, विश्वास, अपने इस विश्वास को हर दिन बढ़ाते जाना है। इसके लिए जितनी संत महात्माएं हैं, जितने महान योगी संसार में हुए हैं, जिन्होंने बहुत सहन किया अपने लिए धर्म के लिए, उनके जीवन की गाथा पढ़ना, अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना, ये बहुत जरूरी है। अगला है तीसरा, परोपकार, बेनिवोलेंस। हर धर्म सिखाता है कि सबका हमें कल्याण करना है, जितने हो सके सबकी मदद करनी है, पुण्य जमा करना है, यही हमारे हाथ में है, बेनिवोलेंस, जो भी मिले सबका कल्याण, उसका भी भला हो जाए, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला, ये भाव हमारे अंदर हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फॉर द गुड ऑफ मैनी फॉर द बेटर ऑफ बेटरमेंट ऑफ मैनी, हर एक का कल्याण हो, ये परोपकार की भावना निरंतर रहे। हमें जहां हम काम करते हैं हॉस्पिटल में, हम देखते हैं बीच में से कितने लोग आ जाते हैं, उनका कोई रिश्तेदार एडमिट नहीं है पर एक एक पेशेंट को एक एक फूल देके चले जाते हैं, अ स्मॉल एक्ट ऑफ गुडनेस, पेशेंट को फूल दिया चले गए, एप्पल दिया चले गए, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से, परंतु इच्छा है अंदर से सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो। माउंट आबू में वहां एक नकी लेक है, वहां पर मछलियां है, हम देखते हैं रोज सुबह सुबह कितने लोग रेगुलरली उन मछलियों के लिए ब्रेड के टुकड़े लेके आते हैं, पूरा 2-3 पैकेट, और मछलियों को ब्रेड देते रहते। मछलियों ने कभी मांगा नहीं है, कभी कुछ कहा नहीं है, परंतु देने की भावना है, कुछ हम करें, सबके लिए कुछ करें। ये जो भाव है इट क्रिएट्स पॉजिटिव एनर्जी विद इन, परोपकार। उसके बाद है ब्रदरहुड, चौथा ब्रदरहुड। ब्रदरहुड अर्थात भाई, भाई की दृष्टि। सब हमारे हैं, सब अपने हैं, वासुदैव कुटुंबकम। ये धर्म तो मनुष्य ने बनाए हुए है, एक ही धर्म है मानवता, एक ही धर्म है ह्यूमैनिटी, और हम सब आपस में एक है, एक के है, एक है, यही स्लोगन है। चाहे हमारे ड्रेस अलग अलग हो, चाहे हम अलग अलग भाषाएं बोलते हो, परंतु इन द स्पिरिट इज वन एंड वी आर वन। ये जब तक भाव नहीं होगा तब तक इस विश्व से अशांति खत्म नहीं होगी। अपने अंदर वो भाव लाना है, ब्रदरहुड। अगला है पांचवा, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट अर्थात संतोष। जो कुछ मिला उसमें मैं संतुष्ट हूं, बहुत मिला मुझे। हे प्रभु, हे परवरदिगार, तूने जो कुछ दिया है इतना कुछ दिया है कि तेरा धन्यवाद। वो कंटेंटमेंट का भाव हमको अपने अंदर लाना है। और कंटेंटमेंट एक हैबिट है, जिसको संतुष्टता नहीं होती है वो हमेशा असंतुष्ट रहता है, वो संस्कार बन गया है, वो हैबिट बन गई है एक। तो अपने अंदर रोज एक बार कहना है कि मैं इस संसार में बहुत संतुष्ट है, मुझे जो कुछ भी मिला है बहुत कुछ मिला है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरा बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद, शुक्रिया तेरा, कंटेंटमेंट। उसके बाद है क्लीनलीनेस, स्वच्छता। हमारा अंतर मन प्योर हो, बहुत स्वच्छ हो। जितना हम स्वच्छ है उतना भगवान के समीप है। जिस मन में ईर्ष्या द्वेष भरी है भगवान से वो बहुत दूर है, चाहे रोज धर्म ग्रंथ पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है या कुछ भी करता है, पर जब तक अंदर में मल है, विकार है, गंदगी है, दुर्गंध है, तब तक हम भगवान से बहुत दूर है। इस जीवन का लक्ष्य है सेल्फ प्यूरिफिकेशन, हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना है, जितना हो सके रोज ऐसे कर्म करना है, ऐसे विचार उत्पन्न करने हैं जिससे मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, कंटेंटमेंट। उसके बाद है डिसिप्लिन, अनुशासन। कितने भी बजे उठ रहे हैं, कितने भी बजे कुछ भी कर रहे हैं, कोई टाइम टेबल ही नहीं है जीवन का। जैसे आर्मी में होता है ना, कैसे डिसिप्लिन होते हैं, देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। ये नहीं पूछा जाता क्यों, क्या, कैसे, अबाउट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, बस करना है। ऐसा अनुशासन हमारे जीवन में चाहिए। कभी 8 बजे उठ रहे, कभी 6 बजे उठ रहे, कभी 4 बजे, कभी 2 बजे, कोई टाइम टेबल नहीं है। कहीं पर भी जा रहे, कुछ भी खा रहे, कुछ भी पी रहे, और फिर बीमारियां। अनुशासित जीवन। हमने पढ़ा है गुरु नानक देव जी के बारे में, ही इज द वन रिलीजियस फाउंडर ऑफ ऑल द रिलीजियस फाउंडर्स हु हैज ट्रेवल्ड द मैक्सिमम इन द होल वर्ल्ड। जितने धर्म स्थापक हुए हैं उन सब में से गुरु नानक देव जी ने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया है। उदासी, इतना ट्रैवल किसी ने नहीं किया है। कितना अंदर संयम होगा, कितना डिसिप्लिन लाइफ होगा अंदर, वो ये दर्शाता है। तो डिसिप्लिन। अगला है डेडिकेशन, इसको हिंदू धर्म कहता है आत्मनिवेदनम। कितना समर्पण है, कितना डेडिकेट किया है हमने इस कॉज के लिए। इस्लाम धर्म में मंसूर की कहानी है, सूफी संत थे, बहुत बेरहमी से उनको मारा गया था, हाथ काटे गए, पैर काटे गए, आंखें फोड़ी गई, पर फिर भी वो जो निश्चय था अंदर वो सेम था, होठों पर मुस्कान थी अंत तक, लास्ट तक, अपने कॉज के लिए एक डेडिकेशन। इसके लिए जीवन दिया है, भगवान के लिए जीवन दिया, ये जीवन पूरा उसी के लिए, और कुछ भी नहीं बीच में आ सकता। हमारे और भगवान के बीच में जो भी आ रहा है उसको विष की तरह त्याग कर देना है, कोई भी बीच में ना आए, डेडिकेशन। उसके बाद में एम्पथी। एम्पथी इंग्लिश शब्द है जिसका अर्थ होता है समानुभूति, दूसरे को क्या दर्द हो रहा है वो फील करना अंदर से। और उसके लिए कुछ करना, एक होता है मर्सी, एक होता है कंपैशन, एक होता है पिटी, दया आ गई पर कर कुछ नहीं रहे, रहम की भावना है पर कर कुछ नहीं रहे, उसके ऊपर की फीलिंग है एम्पति। सभी धर्म सिखाते हैं कि दूसरों के लिए हम जाके कुछ करें, कुछ तो करें उनके लिए जो दुखी है, जो दर्द में है, जो पुकार रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम उनके लिए, एम्पति। उसके बाद है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट अर्थात अवेकनिंग, जागरण। क्या हम होश में हैं या बेहोश जी रहे हैं? क्या हमारा जीवन होश में चल रहा है या बेहोशी में जा रहा है? पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं किस में कर रहे हैं, जैसे लाश घूम रही है। जागृत करना है अपने आप को कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मैं कर क्या रहा हूं, सो तो नहीं रहा हूं। जब अगर इस रास्ते से मुझे चलना है और बीच में गड्ढा है, अगर मैं जागा हूं तो कभी भी गिरूंगा नहीं, जब मैं बेहोश होता हूं तभी गड्ढे में गिरता हूं। और जीवन में जब जब गड्ढे में गिरा, विकारों में गिरा, पाप कर्म में गिरा, शायद मैं सोया था। ऐसी अवस्था हो दिन रात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, हमेशा, सतत, निरंतर, आने जाने वाली नहीं। ये नशा, ये रूहानी खुमारी, ये रूहानी, ये इलाही मस्ती, ये नारायणी नशा, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन जिसको कहते हैं, नशा है, एक अलौकिक नशा है। वो वाला नशा नहीं जो संसार के लोग करते हैं, वो तो चढ़ता है उतरता है, ये नशा तो चढ़ ही रहे दिन रात, निरंतर जो चढ़ा रहे, एनलाइटनमेंट। उसके बाद है ग्रेटिट्यूड अर्थात धन्यवाद। सब दो मिनट के लिए फिर से एकाग्र होकर बैठ जाएंगे। इस दो तीन मिनट में वो जो परमात्मा है, वो जो परवरदिगार है, उसने हमें क्या क्या दिया है, उस सब के लिए उसको हम गीत गाएंगे कि तेरा लाख लाख शुक्रिया। सारी कंप्लेंट बंद, कंप्लेंट का पिटारा बहुत बजा लिया, अब बंद करो उसको। अब हे प्रभु, हे परवरदिगार, हे वाहेगुरु, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद का भाव मन में जागृत करेंगे। इस जीवन में जो कुछ पाया है तेरी कृपा है, तेरी अनुकंपा है, तेरा कर्म है। रोज कम से कम दो बार दिन में, सुबह और शाम, समर्पित कर देना है अपने आप को और उसका धन्यवाद करना है कि तूने जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी जीवन में प्राप्त हुआ है, ये घर, ये संसार, ये सारी सुविधाएं, ये भोजन, उस सब के लिए तेरा दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्राना। इस ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में बहुत जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी है। हम क्या करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, वैसा नहीं दिया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, जीवन में ये खराबी क्यों, वो खराबी क्यों, एक्सीडेंट क्यों हो गया, फ्रैक्चर क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई मी। ये सब को हटाओ, राजी तेरी रजा में, मुझे ऐतराज क्या है, तेरे पास बिजलिया है, मेरे पास आशियाना, पता नहीं कब तेरी बिजली मेरे आशियाने पे गिर जाए और खत्म कर दे सब कुछ। इसलिए हे खुदा, हे परवरदिगार, हे प्रभु, हे भगवान, राजी तेरी रजा में, जो तू सोचे उसी में मैं राजी हूं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। एक बहुत बड़ा बादशाह होता है अफगानिस्तान का, इब्राहिम, वो गुजर रहा होता है, उस समय गुलामों की प्रथा होती है, एक गुलाम बिक रहा होता है बहुत हत्ता तगड़ा, वो उस गुलाम को खरीद लेता है, घर लेके आता है अपने महल में, गुलाम से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, वो गुलाम कहता है जिस नाम से आप पुकारो बस वही मेरा नाम। उससे पूछता है तुम करते क्या हो, वो कहता है जो आप कराओ वो करूंगा। उससे पूछते हैं तुम खाते क्या हो, तुम्हारी क्या पसंद है, वो कहता है जो आपकी पसंद वो मेरी पसंद। वो उससे पूछता है तुम यहां क्या करोगे, वो कहता है जो आप कराओगे। और जैसे ही वो सुनता है उस गुलाम की बातें, उसको वो सोचता है ऐसा ही तो मेरा समर्पण उस भगवान के सामने होना चाहिए, जो तू खिलाए, जो तू पिलाए, जहां तू रखे उसी में मैं राजी हूं, उसी में मैं खुश हूं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, जैसा तू चलाएगा, थाई विल शैल बी डन, तेरी इच्छा, जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा। ऐसा समर्पण जब होगा जीवन से सारी निगेटिविटी खत्म होगी। ईश्वर समर्पित जीवन, वही सब कुछ है, वो चला रहा है, हुक्मी हुकुम चलाए रहा, हुकुम उसका क्या है, उसका हुकुम ही जीवन का सब कुछ है, वो हुक्मी है, उसका हुकुम ही जीवन का सब कुछ है, उसमें हम चल रहे हैं। तो डेडिकेशन, उसके बाद अपरिग्रह, हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है नॉन पोजेशन, कुछ नहीं रखना। मोहम्मद पैगंबर के लिए कहा जाता है वो जो कुछ उनको मिलता था शाम तक सब कुछ बांट देते थे, रात में निश्चिंत होके सोते थे। जमा करना चीजों को, वस्तुओं को, जितना हो सके सबके लिए हो, अपरिग्रह, फ्रुगैलिटी जिसको कहते हैं। उसके बाद है ग्रेटिट्यूड जो बताया, उसके बाद है सिमरन, रोज ज्ञान के कुछ पॉइंट्स, ज्ञान की कुछ बातों का सिमरन करना है अंदर अंदर। उसके बाद है श्रवण, सुनना है, और उसके बाद है साधना। ऐसी ये टोटल 16 बातें हैं जो सभी धर्मों ने कही है, सभी धर्मों में बताई गई है, और आशा है कि जो बातें हमने यहां चर्चा की हम सब उसका पालन करने की कोशिश करेंगे। और फिर से ऑर्गेनाइजर्स का, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब ने यहां हमको बुलाया और ये ज्ञान की यहां पर चर्चा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ओम शांति, थैंक यू।